ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत ने आज अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लाभ के लिए ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार ने आज शहर में दिव्यांगों के लिए विशेष अदालत बनाने की मंजूरी दी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शहर के आईटीओ चौक से की। इस अवसर पर उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे रेड लाइट होने पर गाड़ी का इंजन बंद करके प्रदूषण कम करने में योगदान दें। श्री राय ने कहा कि एक वाहन चालक को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के दौरान कम से कम 8 से 10 रेड लाइट पर रुकना पड़ता है। इस दौरान यदि वे गाड़ी के इंजन को बंद करते हैं तो प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। पर्यावरण मंत्री ने आग्रह किया है कि वाहन चालक इसे अपनी आदत में शामिल करें ताकि पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखा जा सके।
हम सब लोग जो गाड़ियां का इंजन बंद नहीं करते हैं उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है के लिए आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान हम शुरू कर रहे हैं। इस जन जागरूकता अभियान का जो मकसद है कि हम सब लोग जब रेड लाइट हो जाए चौराहे पर तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दें। एक रेड लाइट पर 2 मिनट जब हम इंजन चालू रखते हैं तो लगभग पर डे हम आधा घंटा पेट्रोल और डीजल फूंक रहे हैं बेवजह का। इसलिए आज से जो ये कैंपेन है दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है कि हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे, अपने हिस्से का जो दिल्ली के हिस्से का पोल्यूशन है उसे कम करेंगे।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। आज एक सोशल मीडिया संदेश में श्री सक्सेना ने कहा कि यमुना नदी दिल्ली के लोगों के जीवन का हिस्सा रही है लेकिन इसकी स्थिति देखकर आज सब चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों के लिए यमुना का महत्व छठ पर्व के दौरान और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाकर छठ पर्व मनाते हैं। उपराज्यपाल ने यमुना की इस स्थिति के लिए दिल्ली सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने दावा किया था कि यमुना को साफ और स्वच्छ बनाएंगे लेकिन यमुना जिस हाल में है वो सबके सामने है। वहीं भाजपा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर प्रदूषण का जायजा लेते हुए कहा कि साफ सुथरे कर्तव्य पथ क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण का दोष दिल्ली सरकार किस पर डालेगी। श्री सचदेवा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रदूषण का अंत करने में अब तक नाकामयाब रही है। श्री सचदेवा ने यमुना प्रदूषण को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यमुना में बने सफेद फॉग बता रहे हैं कि आज यमुना अपने बदतर स्थिति में है और सरकार जल प्रदूषण को लेकर अभी तक कोई भी ठोस योजना नहीं बना पाई है। राजधानी में वायु गुणवत्ता के स्तर में आज भी कोई सुधार नहीं आया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 4 बजे तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहा और वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज किया गया। 0 से 50 तक वायु गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है, 51 से 100 के बीच वायु गुणवत्ता संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सामान्य, 201 से 300 के बीच खराब तथा 301 से 400 के बीच बहुत खराब मानी जाती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए आज से एक विशेष प्रदूषण जनित रोग क्लिनिक की शुरुआत की गई है। ये क्लिनिक प्रत्येक सोमवार को संचालित किया जाएगा। अस्पताल में श्वसन विभाग के प्रमुख डॉ. अमित सूरी ने बताया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस क्लिनिक की शुरुआत की गई है जो मरीजों के लिए दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक खुला रहेगा। इस क्लिनिक में श्वसन नेत्र विशेषज्ञ के अलावा मनोचिकित्सक और त्वचा रोग विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे।
आरएमएल हॉस्पिटल में प्रत्येक सोमवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस क्लिनिक यानी कि प्रदूषण जनित रोग ओपीडी शुरू करी जा रही है जिसमें रेस्पिरेटरी मेडिसिन, आई स्पेशलिस्ट, साइकेट्रिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट बैठेंगे। यहाँ पर हम एक ही छत के नीचे चारों कंसर्न स्पेशलिस्ट के डॉक्टर बैठ के पेशेंट असेस करके अपना ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे और हम पेशेंट को काउंसिलिंग भी करेंगे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत ने आज अपने परिचालन का एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली RRTS कॉरिडोर के प्रमुख स्टेशनों का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मेट्रो निरीक्षण के साथ साथ महिला ट्रेन संचालकों और यात्रियों से भी बातचीत की और उनकी यात्रा के अनुभव को जाना। नमो भारत ट्रेन सेवाओं की सराहना करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि गाजियाबाद साहिबाबाद और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन को आसान बना दिया गया है। नमो भारत ट्रेन सेवाओं पर हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 20 अक्टूबर को नमो भारत रेल का उद्घाटन किया था। परिचालन के पहले वर्ष में नमो भारत रेल से 40 लाख से अधिक लोग यात्रा कर चुके हैं। वर्तमान में नमो भारत रेल की सेवाएं 42 किलोमीटर के खंड पर 9 स्टेशनों पर संचालित की जा रही हैं। इनमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण, मोदीनगर उत्तर और मेरठ दक्षिण शामिल हैं। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर खंड के जुड़ने के साथ नमो भारत रेल का गलियारा जल्द ही 54 किलोमीटर का हो जाएगा। मेरठ और साहिबाबाद के बीच नमो भारत के चलने से आम लोगों का सफर काफी आसान हुआ है। अगले वर्ष जून तक RRTS के 82 किलोमीटर के कॉरिडोर के पूरे हो जाने पर यात्री एक घंटे से भी कम समय में दिल्ली से सीधा मेरठ की यात्रा कर सकेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी दिल्ली।
त्योहार के मौसम में प्याज के दामों से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कांदा रेल आज राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई ये रेल महाराष्ट्र के नाशिक से 600 मीट्रिक टन प्याज लेकर आई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस प्याज की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में बिक्री की जाएगी, जिससे प्याज के दामों में स्थिरता आएगी। एक रिपोर्ट।
कांदा रेल से प्याज के दिल्ली पहुंचने पर इसे चार दिनों के अंदर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत दिल्ली NCR की अन्य थोक मंडियों में आपूर्ति की जाएगी। वहीं जनता को प्याज सीधे वितरित करने के लिए मोबाइल वैनों के साथ साथ सरकार ई कॉमर्स मंचों, खुदरा बाजारों और केंद्रीय भंडारों से खुदरा दामों पर बेचने के लिए योजना बना रही है। सरकार ने बताया कि यह प्याज दिल्ली के लोगों की 50% आवश्यकता को पूरा कर सकेगी। इसके अतिरिक्त देश के अलग अलग शहरों में जल्दी ही इस तरह की रेल लखनऊ, वाराणसी और उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए भी रवाना की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श, आकाशवाणी दिल्ली।
दिल्ली जल बोर्ड के सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र में चल रही मरम्मत के कारण बुधवार सुबह 10 बजे से अगले 12 घंटों के लिए राजधानी के कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार सराय कालेखां, लाजपत नगर, मूलचंद अस्पताल, ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज, अम्बेडकर नगर, ओखला, कालकाजी, गोविंदपुरी, दक्षिणपुरी, शाहपुर जाट, कोटला मुबारकपुर, सरिता विहार, मालवीय नगर, छतरपुर और NDMC के कुछ क्षेत्रों सहित आसपास के क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों को आवश्यकतानुसार पानी इस्तेमाल करने और इकट्ठा कर रखने की सलाह दी है। जरूरत पड़ने पर लोग नजदीकी जल बोर्ड केंद्रों से संपर्क कर पानी के टैंकर मंगवा सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में पेंशन और पेंशन प्राप्तकर्ता कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। इस कार्यक्रम में श्रोताओं को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के महत्व, पात्रता और अन्य तकनीकी पहलुओं के बारे में विशेषज्ञों से प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-23-42-10-50 और 011-23-31-44-44 पर विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। उन्होंने श्रमिकों से पोर्टल पर पंजीकरण कराने और उनके लाभ के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। इस पोर्टल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। नई दिल्ली में आज विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा से अलग 15वें क्लाइडोस्कोप शैक्षणिक सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किया है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है सतत विश्व के लिए नवाचार और डिजिटल परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
इस सम्मेलन ने 5G, AI, IoT, क्वांटम कम्युनिकेशन और अन्य परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों में हुए विश्व स्तरीय विकास पर चर्चा करने के लिए शैक्षणिक समुदाय, उद्योग और सरकार के प्रखर विचारकों को एक मंच उपलब्ध कराया है। इस वर्ष के क्लाइडोस्कोप की मेजबानी करके वैश्विक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व का प्रदर्शन जारी है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से भारत ने डिजिटल अवसंरचना में नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कल 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज सहित 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा को मिला है, उत्तर प्रदेश को द्वितीय और गुजरात तथा पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने आज शहर में दिव्यांगों के लिए विशेष अदालत बनाने की मंजूरी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिव्यांगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि विशेष अदालत को इस प्रकार निर्मित किया जाएगा कि वो दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यायिक कार्रवाई संचालित कर सके। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि इससे दिव्यांगजनों का न्याय प्रणाली पर विश्वास मजबूत होगा। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आज समापन हो गया। इस महोत्सव के समापन सत्र में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद एवं अभिनेत्री हेमा मालिनी उपस्थित रहे। 6 दिनों तक चले इस महोत्सव में अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर और श्रीलंका समेत कई अन्य देशों से कलाकार, विद्वान और नृत्य आलोचकों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थों के व्यापार, साइबर अपराध, घुसपैठ, आतंकवाद और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अशांति फैलाने के प्रयास जैसे खतरे देश के सैनिकों के दृढ़ संकल्प के सामने नहीं टिक सकते। आज नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए श्री शाह ने कहा कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले ही शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक बार ये कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे तो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बन जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी कोने में दर्ज किसी भी अपराध में 3 साल के भीतर न्याय मिलेगा। श्री शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि न्याय में देरी पर काबू पाने का रास्ता इन 3 नए कानूनों के कार्यान्वयन में निहित है। पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि आयुष्मान CAPF योजना के माध्यम से 41 लाख से अधिक कार्ड वितरित किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में आज कई क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और दिन भर धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए आज से रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत ने आज अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लाभ के लिए ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। और दिल्ली सरकार ने आज शहर में दिव्यांगों के लिए विशेष अदालत बनाने की मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।